सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए, आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार।
सब में हो सहयोग भावना,
जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार।
सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार।
ओम शांति। द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप में आज पहला है ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप, संबंधों में ईमानदारी। तो ईमानदारी एक दिव्य गुणों के गुलदस्ते में फूल है, लेकिन बुक के अंदर देखा तो उसके बारे में कुछ मिला है। एक फूल जो है गुप्त है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, खुशबूदार है। इसकी खुशबू सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन भारत के बाहर भी बहुत सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल है इसके, कि अगर ईमानदारी हमारे जीवन में है तो वो उस व्यक्तित्व को, उस व्यक्तित्व को अमर बना देती है, अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते। तो स्कूल में भी बच्चों को ईमानदारी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि जो हमने कभी स्कूल में सुनी हुई एक स्टोरी है। किसी एक गांव में एक लकड़हारा था, नदी किनारे वो अपने कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां तोड़ रहा था, और तोड़ते तोड़ते वो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब वो दुखी होके निराश होके बैठ गया कि हे भगवान, अभी मैं अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कैसे करूंगा। तो फिर अचानक से उसकी आर्त पुकार सुन के वहां से जल देवी प्रकट हुई, और उन्होंने पूछा कि बालक क्या हुआ, क्यों रो रहे। तो उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने एक डुबकी लगाई और अंदर से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। तो बोला लो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी नहीं है, ये तो गोल्ड की है। तो फिर वो देवी फिर से एक डुबकी लगाती है, दूसरी चांदी की कुल्हाड़ी निकालती है। तो वो कहते ये भी मेरी नहीं है। तो फिर वो फिर से एक बार डुबकी लगा के उसकी जो लोहे वाली लकड़े के डंडे वाली वो कुल्हाड़ी निकाल देते और वो देवी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती है और उसको क्या करती है, पुरस्कार के रूप में तीनों कुल्हाड़ी दे देती। तो बच्चों को स्कूल में ये स्टोरी बताई जाती है और ईमानदारी सिखाई जाती है। तो अब आते हैं मूल टॉपिक के ऊपर कि संबंधों में ईमानदारी। तो संबंध तो हमने 108 संबंधों की लंबी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन शुरुआत करते हैं खुद से कि खुद का, खुद के साथ हमने संबंध कितना जोड़ रखा है। अगर खुद का खुद से ही संबंध नहीं है, उस संबंध में ही ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, तो ना हम खुदाई के मददगार बन सकते हैं, ना हम विश्व के सेवाधारी बन सकते हैं, ना और किसी के काम आ सकते। खुद ही जिएंगे और खुद ही मर जाएंगे। ऐसा निरर्थक व्यर्थ जीवन ना बन जाए। इतना अमूल्य जीवन, इतने अमूल्य घड़ियां हमको मिली हुई है। तो खुद का खुद से नाता। तो प्यारे बाबा ने हमको इतने सुंदर वरदानों से, स्वमानों से, गुणों से, शक्तियों से अलंकृत कर दिया है, भरपूर कर दिया है। लेकिन हम खुद ही खुद से प्यार नहीं कर रहे, खुद ही खुद पर रहम नहीं कर रहे, तो हम ऑनेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं परवश है। वो आगे आएगा। तो पहली श्रीमत तो बाबा ने दी हुई है कि मैं कौन हूं, एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, ये एक ऑनेस्टी है, अपने आप को आत्मा समझना। अब दूसरी ऑनेस्टी है खुदा के साथ, भगवान के साथ। अब यहां पर बाबा ने कहा है कि और सब संबंध तोड़ दो, बस मेरे एक से सारे संबंध अब जोड़ दो। तो ये तो बहुत आसान तरीका है कि बाकी और के संबंध तोड़ दो और एक बाप से संबंध रखो। ये तो इजी है ना, ऑनेस्ट रहने के लिए एक को निभाना। लौकिक में होता है, दुनियादारी में, इसको भी रिस्पेक्ट देना है, उसको भी खुश करना है, इसको भी कोई मेरे से नाराज न हो, छोटे बड़े सभी के साथ तोड़ निभानी पड़ती है। लेकिन यहां तो अभी सारे संबंध एक के साथ ही निभाने हैं, तो कितना इजी है। नहीं, भगवान के साथ तोड़ निभाने की क्या बात है, वो तो खुशी खुशी से हम निभाएंगे ना नाता। जैसे एक स्कूल में बच्चा होता है तो वो देखता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसके पिताजी टीचर है। अब उसको अपनी बातें शेयर करनी है तो कुछ पढ़ाई के बारे में पूछना है तो भी अपने पिता से पूछना है, उसे कुछ पेन पेंसिल चाहिए तो वो भी अपने पिता से ही, तो दोनों उसको एक साथ मिल रहा है। तो वो देखता है कि काश मेरा भी ऐसा होता। तो बिल्कुल हमें सिर्फ बाप टीचर ही नहीं, लेकिन सद्गुरु के रूप में भी शिव बाबा मिला हुआ है। तो लौकिक में भक्ति में हम कहते थे कि तुम्ही हो माता, बंधु, सखा, सारे रिलेशंस हम उससे भक्ति में ही क्या किया, हमने अभ्यास किया हुआ है। अभी तो बस प्रैक्टिकल में वो निभाना है और उससे भरपूर होना है। तो वो वादा हमने किया था, अगर हमने किसी से वादा किया और वो वादा हमने निभाया नहीं, तो उसको ऑनेस्ट कहेंगे? नहीं। तो हमने उससे वादा किया था कि बस एक बार आ जाओ, हम आप पर क्या हो जाएंगे, न्योछावर हो जाएंगे। आप जो कहेंगे, जो खिलाएंगे, जो जहां बिठाएंगे, हम सब आपकी बात मान लेंगे। लेकिन अभी धीरे 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 हमारी डिमांड बढ़ती तो नहीं जा रही है। ये जो रिलेशन है उस भगवान के साथ हमारा, उसमें ऑनेस्टी कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रही है। कभी बाबा ने पूछा था निश्चय के बारे में कि निश्चय में परसेंटेज होती है या यस और नो। वैसे ऑनेस्टी में भी परसेंटेज होती है या यस और नो होता है? नहीं, हो सकता है ना कि इस बात में मैं तो ऑनेस्ट हूं लेकिन इस बात में नहीं हूं। हाँ चलेगा ना कि हाँ फलानी धारणा में मैं ऑनेस्ट हूं, मैं बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करूंगा, इसमें ऑनेस्ट हूं। अमृत वेला थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, हाँ उसमें परसेंटेज है, कभी है कभी नहीं है, है ना। मुरली के लिए हाँ ऑनेस्ट हूं, पंक्चुअल हूं। लेकिन ऑनेस्ट माना ऑनेस्ट, परसेंटेज नहीं होनी चाहिए यहां भी। फिर ऑनेस्टी बाबा के साथ और कौन कौन सी हो सकती है? देखो, जैसे हमने उससे वादा किया था वैसे उसने भी हमसे वादा किया था, उसने भी गारंटी की थी। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः तदात्मानं सुजान्म्यहम्। इस जो श्लोक है इसके बारे में भी हम ऐसे ही बताते हैं ना कि देखो भगवान ने हमसे प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा और वो इस धरा पर आ चुके हैं। तो हमने भी कुछ प्रॉमिस किए, उन्होंने भी किए। उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो तो देखो 100% से भी ज्यादा निभा रहे हैं, लेकिन हमारी जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो रही। फिर अगला जो है अगली ऑनेस्टी कौन सी? कि माता पिता से, लौकिक माता पिता। अगर लौकिक माता पिता के लिए बच्चों का एक उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि उनको एक जिम्मेवारी होती है कि उनको हमें संभालना है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो माता पिता को नहीं संभालते, तो उसको क्या कहेंगे? एहसान फरामोश कहेंगे, और क्या कहेंगे? कपूत कहेंगे, और क्या कहेंगे? कमबख्त, नालायक। और कि जो माता पिता की पालन ना फरमान, और हाँ वो तो माता पिता कहते कि ये तो जन्मते ही मर क्यों नहीं गया, है ना, श्राप दे देते हैं जैसे। तो ईमानदार बच्चों की भी क्या है, लंबी लिस्ट है। जैसे श्रवण कुमार दिखाया हुआ है, उसने अपने उत्तरदायित्व को कैसे निभाया। भीष्म पितामह है, अपने दुखी पिता का दुख दूर करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। राम ने भी अपना पत्नी का त्याग कर दिया अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए। सुखदेव उसने अपने भारत माता का क्या किया, उत्तरदायित्व निभाने के लिए फांसी पर चला गया, ऐसा सुखदेव। तो ये है हुआ माता पिता के प्रति बच्चों का और उत्तरदायित्व, अपने इस रिलेशनशिप में ईमानदारी। अभी छोटे छोटे बच्चे भी देखो, जब बात अपने ऊपर आ ही जाती है, एक छोटी सी बच्ची अपने जो जैकेट का रनर है उसको बार बार मुंह में डाल रही थी, तो उसकी मम्मी ने डांटा कि ऐसे मत कर। तो भी वो मानती नहीं थी, उसको अच्छा लगता था और वो आखिर चला ही गया अंदर। अभी उसको अपने मम्मी को बताता तो है लेकिन युक्ति देखो उसकी, बोलती है मम्मी क्या हुआ, ये फैन की हवा से ना ये ऐसे चला गया अंदर। तो उस माँ ने पहले उसको दो लगाए। एक्चुअली देखो उसने ईमानदारी से बताया है तो सच्चाई हिम्मत तो की ना बताने की। तो उस मिलावट को भी थोड़ा इग्नोर करके उसको थोड़ी हिम्मत देनी चाहिए। छोटे बच्चों के प्रति भी माता पिता का एक कर्तव्य है, एक ऑनेस्टी है कि अगर वो सच्चाई से आपसे कोई बात शेयर करता है तो उसको डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। उसको उसकी सच्चाई के प्रति, ईमानदारी के प्रति क्या करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए। तो ये हो गया माता पिता और बच्चों के संबंध में ईमानदारी, ऑनेस्टी। अगला है भाई और बहन आपस में। तो मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है कि हमारी मौसी जो थी वो नजदीक ही रहते थे, हालांकि हम भी दो भाई थे। हाँ तो रिगार्ड रिस्पेक्ट तो था, रिगार्ड रिस्पेक्ट तो था, लेकिन हमसे भी कई गुना ज्यादा मुझे उनमें दिखाई दिया। जो मौसी का जो बड़ा बेटा था वो जैसे ही घर में एंटर करता था तो वो छोटा भाई उसको इतना रिगार्ड देता था कि अगर वो बैठा हुआ है तो वहां से उठ जाएगा सोफे से और रिमोट टीवी का उसके हाथ में पकड़ा देगा, फिर पानी का ग्लास भी भर के ला देगा और दादा दादा नहीं, डर भी नहीं था वहां पे, बहुत ज्यादा सम्मान था मैंने देखा। एक्चुअली उनकी माता जी में ना मेरी मौसी भी उसको बोलती थी ये क्या नाटक है, ये वो तो कुछ काम करता नहीं है, तुम तो काम भी करते हो और वो भी आता है महाराजा और महाराजा जैसा और बैठता है और तुम भी उसके आगे पीछे घूमते रहते। लेकिन सचमुच भाई भाई का भी जो आपस में प्यार होता है, स्नेह होता है, वो एक ऑनेस्टी होती है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है और घर को एक घर बनाए रखने में मदद करती है। तो हम विश्व बंधुत्व का भाव, विश्व बंधुत्व का जो भावना है दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन सचमुच हम आपस में मुख से तो भाई बोल देते हैं, भाई जी बोल देते हैं, भाई साहब बोल देते हैं, लेकिन वो कितना बाय हर्ट है यहां से है हमारा ऑनेस्टी। अगली जो ऑनेस्टी है मित्र, फ्रेंड सर्कल। तो ये ऑनेस्टी तब पता पड़ती है जब रिजल्ट का दिन होता है। इक्वल है, समान है तो ठीक है, थोड़ा सा भी एक मार्क भी ज्यादा है तो कम है तो दुख भी होता है कि अरे इसको कम मिले, लेकिन एक मार्क्स ज्यादा मिलता है तो भी दुख भी होता है। तो ऑनेस्टी, मित्रता में, फ्रेंड सर्कल में ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो फ्रेंड सर्कल में और कौन कौन सी ईमानदारी, तो अगला जो रिलेशन है पति पत्नी, पति पत्नी का जो संबंध है उसके बीच में क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। जैसे बाबा ने भी कही एक बार मुरली में आया था, स्लोगन था, कौन सा स्लोगन था वो, तो बेवफा कौन है जो एक बाप को छोड़ करके दूसरे किसी को याद करता है तो वो हो गया बेवफा। तो चेक करना है कि मुझे और कोई देहधारी की याद तो नहीं आ रही है, मैं खुद बेवफा तो नहीं बना हूं उस शिव साजन के साथ। तो इसके भी बहुत उदाहरण है, भक्ति में भी है, इतिहास में भी है। भक्ति में किसका उदाहरण दिखाते हैं? पति पत्नी का बीच में ईमानदारी, सत्यवान सावित्री का है। नहीं का भक्ति तो की होगी ना, भक्ति का उदाहरण पूछ रहे, नल दमयंती। और उदाहरण जो बाबा भी मुरलियों में भी सुनाते हैं, और जो इतिहास में देखा जाए कि अगर पति मर जाए तो पत्नी सती चली जाती थी। वो हाँ, रिवाज तो बाद में बना, लेकिन जिसको जौहर नाम दिया गया है, आज भी उन महान पद्मिनी, उन आत्माओं का प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट व्यक्त किया जाता है। उनको देवी का टाइटल दिया गया है, हाँ, कि उन्होंने अपने पवित्रता के लिए अपना अपनी जान दे दी। तो जौहर भी उसका प्रतीक है। फिर है वट सावित्री की पूजा, कि सात जन्म यही पति मिले। तो सात जन्म तक मुझे यही पति मिले, इतनी प्रतिज्ञा तक कर लेते हैं। माना पहले ही इतना था, इस रिलेशन में क्या थी, वफादारी थी, ऑनेस्टी थी, पति परमेश्वर था, पति गुरु था, लेकिन आज वो बातें देखने को नहीं मिलती। तो एक हंसी की बात याद आ रही है, जब कॉलेज में थे इलेवेंथ में, तो हमारी भाषा विषय की जो टीचर है, कुछ पढ़ा रही थी लिटरेचर में, तो वो बता रही थी कि ये जो लेखिका है अभी भगवान के दर पे गई है, और उन्होंने कुछ राइमिंग जोड़ दिया कि देवा तुझा दारी विसावा पुनर्जन्म नसावा। मना भगवान, अब मैं तुम्हारे दर पे आई हूं और अभी मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। और फिर मुझे तो ऑब्जेक्शन था ही। मैंने कहा नहीं, राइटर ऐसे कभी नहीं कहेंगी, राइटर तो कहेंगी मुझे सात जन्म यही पति मिले। तो मैडम ने फिर उन्हीं दिनों में वट सावित्री की पूजा थी, तो मैम ने अपने शब्द पीछे ले लिए, बोले ठीक है ये ऐसा ही कहेंगे। तो इस रिलेशन में क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। फिर अगला जो संबंध है टीचर का, टीचर और स्टूडेंट का संबंध, उसमें भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। वो कैसे? हाँ, होमवर्क खुद किया हुआ हो, नहीं तो अपने बड़े भाई से, मम्मी के सहयोग से किया हुआ। हाँ, तो टीचर के साथ स्टूडेंट की ऑनेस्टी। तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं बाबा के? हाँ, यहां तो खुली छूट है कॉपी करने की, पूरा पूरा फॉलो करना है। तो टीचर के साथ ऑनेस्टी हो गई। अभी सदगुरु, हमें तो सदगुरु बाप मिला है दुनिया में, तो उन लोगों के पास गुरु है, और उनकी महिमा बाबा ने भी की हुई है कि उन्हीं के पवित्रता के बल से क्या हुआ है, भरत थमा हुआ है। तो ऐसे ही एक महान गुरु हुए जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था, चाणक्य, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, एक साधारण से ग्वाले को एक राजा बना दिया, सम्राट बना दिया। तो उनके पास एक विदेशी मिलने के लिए आया था, परामर्श लेने के लिए। तो जैसे ही वो कक्ष में आया और उसने अपनी बात रखी, तो आचार्य ने क्या किया, जो दिया जल रहा था उसको बुझा दिया, अंदर गए, दूसरा दिया लाया और फिर उसको जलाया। तो वो विदेशी जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, तो उसने तुरंत पूछ लिया कि आपने क्या किया, एक तो ये जल रहा था इसको बुझाया, और जल ही रहा था बुझाया क्यों, अगर दोबारा जलाना ही था तो इसको बुझाया क्यों। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी मैं जो काम कर रहा था जब आप आए, तो ये मैं अपने देश के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व था, जो जिम्मेवारी थी, वो मैं निभा रहा था, जो काम कर रहा था। अभी आप जो आए हैं मेरे साथ पर्सनल मीटिंग, एक परामर्श लेने के लिए आए हो निजी तौर पर, तो अभी ये मेरे निजी संपत्ति का जो है प्रयोग मैं करने जा रहा हूं। ये मेरे देश की संपत्ति है, ये मैं पर्सनल चीज के लिए यूज नहीं कर सकता। ऐसे कुछ दिन पहले साकार मुरली में भी आया था कि सेवा के समय क्या नहीं करना है, आराम, हाँ आराम, आराम की भी बात है। हाँ तो माना जो स्थान जिस इसके लिए हमें दिया गया है उसी के लिए उसका यूज होना चाहिए। ऑफिस में हम पर्सनल चीजें ना करें, और पर्सनल में ऑफिस भी नहीं लाना है। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है, योग के समय बैठे हैं और हमें सेवा याद आ रही है ना। तो सतगुरु की साथ हमें क्या कर रहे हैं, ऑनेस्ट रहना है। फिर अगली ऑनेस्टी है प्रकृति के साथ, कि जिसको हम बहुत यूज करते हैं, जो प्रकृति हमारी सतयुग में दासी थी है ना, सेवाधारित। तो ये जो है प्रकृति, उसमें पशु पंछी भी आएंगे कि देखो हम अपने स्वार्थ के लिए है ना, गाय भैंस तो पाल लिया लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए उसके बच्चे को भूखा रख के हम उसका ज्यादा से ज्यादा दूध निकाल रहे। तो ये भी हमारी क्या नहीं है, प्रकृति के प्रति ऑनेस्टी नहीं है। तो इसी कारण के अपने बी के भाई बहने भी विदेश में भी बहुत ज्यादा क्या बने, क्या बोलते हैं उसको, विगन। तो माना वो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ही खाते नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि उन पशुओं को कैसे एक्स्ट्रा उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनको कुछ खिलाया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाइयां खिलाई जाती है, और दूध वो उनसे प्राप्त किया जाता है। तो यहां भी हमें क्या करना है, प्रकृति के प्रति भी ऑनेस्ट रहना है। इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में हमें क्या करना है, सहयोग देना है। जैसे कि यज्ञ में भी हमें स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसको स्वयं उपराष्ट्रपति जी ने भी क्या किया, हमारी सराहना की। तो उसमें मैं भी कौन हूं, यज्ञ निवासी हूं, मैं भी इस भारत देश का एक सजग नागरिक हूं। तो मुझे भी निजी तौर पे क्या करना है, स्वच्छता और प्रकृति को अच्छा रखने के लिए एक संस्कार डालना है। देखो सतयुग में हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ खा लिया और चीजें इधर उधर फेंक दी, ऐसा हम नहीं करेंगे। वह हर बात बहुत क्या होगी, कायदेसर होंगे। तो वो दैवी जो हमारा वो जो दैवी संस्कार है हमें अभी से डालना है। तो ये हो गया प्रकृति के प्रति। अगला जो है थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन मुझे लगा, मालिक और मजदूर के प्रति वफादारी बहुत जरूरी। नहीं तो क्या होता है कि हाँ हम तो ड्राइवर हैं, हम सिर्फ गाड़ी चलाएंगे और दूसरी कोई छोटी मोटी सेवा है वो हम नहीं करेंगे। हाँ हमें भी, हम मालिक हैं तो हमें भी उनके प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा एक क्या होना चाहिए, कमांड भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो हमें चलाए, हमें उनको चलाना है, लेकिन ऐसा ना हो जाए वो हमें चलाए। हाँ कल ही बाबा ने एक इंग्लिश लाइन बोली है कि आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, वर्ल्ड वर्ल्ड शब्द। तो बाबा ने कहा यहां नवा भी नहीं दिखानी, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस भी होना बहुत जरूरी, वो नौकर ही हमको नहीं चलाए। तो मालिक और मजदूर, यहां न कोई मालिक है न यहां कोई मजदूर है, यहां सब मालिक है और यहां सब मजदूर है। ये दो स्टेटमेंट है। बाबा ने हमें सिखाया है वर्ल्ड सर्वेंट, बाबा ने खुद कहा हमें विश्व आप वर्ल्ड का सर्वेंट हो, और कहा बच्चों में आपके लिए हाजिर हो, बोलो मेरे मालिक, ऐसे भी कहा बाबा ने। और हमें बन के दिखाना है विश्व का सेवाधारी, ये भी हमारा क्या है, स्वमान है। दूसरा कि मैं राजा हूं मालिक हूं तो किसका हूं, अपने जूनियर्स का, अपने डिपार्टमेंट में मालिक हूं, किस किस का मैं मालिक हूं, मैं अपने कर्मेंद्रियों का मालिक हूं, मैं अपने जो तो मैं मालिक हूं, किसका मालिक हूं, मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। और अगर मैं सर्वेंट हूं तो किसकी सर्वेंट हूं, इसके ऊपर मुरली भी है, बालक और मालिक, कब मालिक बन के राय देनी है और कब बालक बन के। तो ये हो गया मालिक और मजदूर के बीच का ऑनेस्ट। अभी है डॉक्टर और पेशेंट, अगर छिपाएगा पेशेंट तो डॉक्टर गलत दवाई दे देगा और फिर डॉक्टर भी बदनाम हो जाएंगे, और मरीज के प्रति डॉक्टर की क्या ऑनेस्टी हो सकती है। लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं पहले ही बीमारी बता देते, उससे वो पहले ही घायल हो जाता है। तो हाँ, छुपाना भी नहीं है लेकिन बड़ी युक्ति से, सामने वाले को नब्ज देखते हुए, नहीं तो बेचारा कमजोर दिल का है तो वो पहले ही हार्ट फेल ना हो जाए कि मेरी तो ये बीमारी। पेशेंट के फिर ईमानदारी एक अपने आप में बल है, ईमानदारी बल, ईमानदारी का बल। तो एक राज्य में क्या हो रहा था, बारिश ही नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया, और फिर राजा ने विचार विमर्श किया विद्वानों से कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम अपना पुण्य का भी दान करेंगे। तो राजा ने आगे आके कहा कि मैंने जितना भी दान पुण्य किया हुआ है वो सब मैं अर्पित करता हूँ, मेरे अपनी प्रजा के लिए बारिश की आवश्यकता है और वरुण देवता को खुश करना चाह। लेकिन बारिश आई नहीं, फिर एक एक मंत्रीगण भी आए, फिर भी बारिश आई नहीं। लेकिन एक व्यापारी आया और उसने कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में इस माप में देने में थोड़ी भी बेईमानी की होगी तो बारिश आए ही नहीं। और सचमुच बारिश आने लगी और वो जो व्यापारी था प्रसिद्ध हो गया। तो ईमानदारी में क्या होती है, एक सिद्धि भी होती है। ईमानदारी एक बल है, शक्ति है, सिद्धि है। तो व्यापारी, व्यापार में भी क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसे ही एक व्यापारी था जिसके पास काली मिर्च का गोदाम था और मंदी काली मिर्च, हाँ, तो उस काली मिर्च का गोदाम था और मंदी चल रही थी तो मार्केट डाउन हो गया था। उसको कुछ भाव कम होने के कारण उसने क्या किया, सोचा कि अभी मुझे बेचना नहीं है, अभी मैं रखूंगा। लेकिन उसके के बीच एक विदेशी आया और बोला कि मेरे पास कुछ बोरे हैं काली मिर्च के, आप रख लो और मुझे उधारी में कुछ पैसा दे दो। तो उसने कहा नहीं, उधारी तो मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन आपसे खरीद सकता। तो उसने कुछ बोरे दे दिए और पैसे ले लिए। कुछ दिनों के बाद वही विदेशी व्यापारी आया और बोला कि मुझे और पैसे की आवश्यकता है, मेरे पास जो बचे हुए हैं वो काली मिर्च के बोरे आप ले लो और मुझे आप क्या करो, पैसा दे दो। और वो व्यापारी उसके वो बोरे भी बचे हुए खरीद लेता है और उसको पैसे देता है। जब वो विदेशी ग्राहक देखता है कि अरे पैसे तो कुछ ज्यादा है, तो वो बोलता है कि ये ज्यादा है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी रेट बढ़ गया है। तो ऑनेस्टी, बिजनेस में भी ऑनेस्टी, ऐसे नहीं कि सामने वाला जो कस्टमर है वो अनजान है, उसको रेट के बारे में पता नहीं है, तो हम उसको क्या कर देवे, कंप्यूटराइज्ड बिल देने के बजाय हाँ अभी लाइट नहीं है, मैनुअल बिल बना के दिया और ठग दिया। तो अपना गुडविल बनाए रखने के लिए, अपनी जो बिजनेस की जो ग्रोथ करने के लिए, व्यापार में भी ऑनेस्टी की, ईमानदारी की बहुत बहुत आवश्यकता है। और यहां तो बाबा ने हमें कौन सा व्यापार सिखाया है, ज्ञान रत्नों को बांटने का। यहां हमें कोई ठग सकता है क्या? जो ठगेगा वो क्या होगा? हाँ, जरूरत से ज्यादा देना, नब्ज देखे भी नहीं देना, ये खुद को ठगने जैसा है। इस बिजनेस में भी बाबा ने कहा है बच्चे कैसे होना है, उबासी नहीं देनी है, बड़ा अलर्ट होके ये धंधा करना है। और क्या क्या कहा है बाबा ने इस बिजनेस में, हमें कौन कौन सी डायरेक्शन दी हुई है? हाँ, उबासी नहीं देनी है और खाता रखना है। कौन सा खाता रखना है? जमा का खाता रखना है। और कौन कौन सी डायरेक्शन दी है बाबा ने बिजनेस में हमें? लेकिन उसने तो उठा के पुलिस तक गया, लेकिन हमारी तो नजर ही न पड़े। तो ये एक्चुअली यहाँ खोया पाया विभाग है, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तब मैं जब साइकिल जहां पार्क की हुई थी, तो वहां ना जब मैं साइकिल लेके निकल रहा था तो मुझे 1-2 रुपए के कुछ कॉइन्स दिखे। तो मैंने उसी दिनों में बाबा ने कहा था कि हमारी नजर नहीं जानी चाहिए, तो मुझे तुरंत ज्ञान याद आया, और मैंने बड़ी खुशी खुशी से वहां से निकल गया। मैंने उस कॉइन की तरफ मना इग्नोर किया। और जब मैं कॉलेज से आ रहा था और सिग्नल इतना फुल पूरा मना भीड़ थी, उसके बीच में रेड सिग्नल था, और अब मैं साइकिल पर होने के कारण जा सकता था, और मैं अकेला था, मेरे पास पर्याप्त समय था कि अपनी साइकिल बीच सड़क में रोक के वो 500 की नोट उठाने का पूरा पूरा समय था मेरे पास। लेकिन मुझे वो सुबह की स्मृति आई कि सुबह ही मैंने बाबा से जो श्रीमत मिली उसका पालन भी किया, मुझे खुशी भी हुई, और अभी अमाउंट बढ़ गई है तो मैं साइकिल क्यों रोकूं? और मुझे देखने वाले तो इतने लोग हैं, ये सब देखेंगे कि इसने तो 500 की नोट इसको तो मिल चुके हैं, नहीं रियल थी। तो फिर जब मैं आगे गया तो सचमुच मुझे खुशी हुई, आंतरिक खुशी, कि ये जो ऑनेस्टी है, हमें लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये जो ऑनेस्टी खुद के साथ जो बाबा ने हमें श्रीमद बताई हुई है और उस पर हम जब चलते हैं, तब जो अतीन्द्रिय सुख की जो हमें अनुभूति होती है उसमें बहुत मजा आता है। तो ऑनेस्टी, तो मधुबन वालों के प्रति बाबा बात कर रहे हैं, 69 की मुरली है, डेट मुझे याद नहीं है, गोपों के साथ। तो बाबा ने कहा मधुबन वाले माना शोकेश में आपको रखा हुआ है। और फिर यहाँ पर बाबा ने कहा है कि आगे इसी मुरली में है कि आप अकेले नहीं हो, आपको कौन देख रहा है? आपके भक्त देख रहे हैं, आपकी प्रजा देख रही है। फिर आगे बाबा ने कहा कि जैसे गर्भ में शिशु पल रहा है, वैसे आपके गर्भ में क्या पल रहा है? आपके भक्त और आपकी प्रजा पल रही है। जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसी आप चलन करेंगे, वैसे ही संस्कार उस पर हो रहे हैं। अगर आप अभी आपकी चलन ऑनेस्ट वाली नहीं होंगी, ईमानदारी वाली नहीं होंगी, तो भविष्य में आपको प्रजा भी वैसे ही मिलेंगी, आपके भगत भी वैसे ही मिलेंगे, कहीं दूर में आपका मंदिर बांध देंगे और कई एक बार साल में पाइप से आपकी मूरत को धो देंगे। तो ये हो गई ऑनेस्टी। अभी अगली ऑनेस्टी है सिपाही, एक देश की रक्षा करने वाला सिपाही है, जब उसकी दुश्मन सेना उसको पकड़ लेती है और उसको अपने देश के राज बताने के लिए क्या करती है, प्रताड़ित करती है, उस समय उसकी ऑनेस्टी दिखाने का समय होता है। अगर वो उनसे ही मिल जाए, अपने देश के प्रति क्या बन जाए, ट्रेटर बन जाए, गद्दार बन जाए, या अपनी जान दे देवे, तो एक सिपाही को अपनी जो प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा लेकिन अपनी गुह्यराज दुश्मन के आगे कभी नहीं खोलूंगा, बिल्कुल उसी तरह क्या करना है हमें, इस सिपाही की तरह जान दे देनी है, है ना। बाबा ने कहा है ना, गला भी कट जाए, लेकिन ये जो प्यूरिटी के प्रति बाबा ने ऑनेस्टी के लिए ये शब्द कहे हुए हैं, तो ये रही अंतिम ऑनेस्टी। अच्छा, ओम शांति।